कल्पतरुभ्यश्च कृपाशीलैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरदत्तिषे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगन्मते गोपेश गोपिकाकान्त सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी का स्वरूप उन्होंने वर्णन किया। कृष्ण स्वयं ईश्वर है, स्वयं रूप है, समस्त कारणों के कारण है, समस्त अवतारों के बीज हैं, मूल हैं, उनका आदि कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण है और सब रस और वे प्रेम के विषय और आश्रय भी संपूर्ण। और श्रीमती राधिका जी के लिए राधिका जी का तत्व बतला रहे हैं, उसके लिए बतला रहे हैं। राधिका जी कोई एक साधारण स्त्री नहीं है, कृष्ण एक साधारण पुरुष नहीं है। कृष्ण के लिए तो बतला, राधा जी के लिए बतला रहे हैं, ये कृष्ण की एक पराशक्ति है, वही पराशक्ति अनंत रूप में प्रकाशित होने पर उसके अनंत नाम होते हैं। कहीं उस शक्ति का कायद्य, कहीं उसका प्रकाश, कहीं उसकी छाया, कहीं उसकी विकृति, तरह तरह के रूपों में वो प्रकाशित है। उनका काय रूप गोपियां हैं, उनका प्रकाश कहो सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि ये सब, और वैकुंठ में लक्ष्मी, सब उनकी ये अंश या प्रकाश या वैभव। और इसके बाद में जो देवी दुर्गा इत्यादि जो कही जाती हैं महामाया, ये सब बिल्कुल छाया है इस जगत में। तो इस तरह से अनंत रूपों में वो प्रकाशित और उनमें अनंत रूपों में तीन प्रधान है, इस शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। मायावादी लोग, अद्वैतवादी लोग भगवान को निराकार शक्ति कहते हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं, किंतु शास्त्रों में सर्वत्र ही उनकी शक्ति मानी गई है। नहीं तो जगत की सृष्टि भी नहीं होती, हम लोग भी नहीं प्रकाशित होते। उसमें एक चित शक्ति, एक माया शक्ति, एक जीव शक्ति। किस शक्ति के द्वारा वैकुंठ में जो कुछ भी चीजें हैं सब उनसे प्रकाशित होती है और उनका जन्म और मरण नहीं, वो सब नित्य है। और कृष्ण का शरीर, वहां पर उनके परिकरों का शरीर, वैकुंठ इत्यादि में या वहां पर ब्रज में जितने भी वृक्ष लता इत्यादि जी दिखते हैं, सब कुछ जितने भी हैं सब चीज शक्ति का ही परिणति। और मैं शक्ति जीव शक्ति को छोड़ करके और किस शक्ति को छोड़कर इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ दिखता है वो सब माया शक्ति का परिणाम है। जैसे हम लोगों का शरीर वृक्ष, घास, कीट, पतंग, पर्वत, नदी, नाले, जो कुछ भी इस जगत में देख रहे हैं सब ये माया शक्ति का परिणति है। परिणति मैंने माया शक्ति का ही वो रूपांतर। और ये शरीर अंदर में जो शक्ति है उसके रहने से हम देखते हैं, ये शरीर देखता है, उसके रहने से ही आंखें देखती हैं, मस्तिष्क काम करता है, पैर चलते हैं, कुछ जो कुछ भी करते हैं, वो जो शक्ति है वो है जीव शक्ति। वो भगवान की का अंश है। कैसा अंश? केवल मात्र तटस्था शक्ति या जीव शक्ति समन्वित ब्रह्म का या भगवान का वह अंश है। अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जाए, जिस शक्ति को अंतरंगा कहते हैं, अंतर अंगा अंतर अंग में अवस्थित रहती है, इसलिए अंतरंगा। और माया शक्ति को बहिरंगा, बहिरंग में अवस्थित है इसलिए इसको बहिरंगा। और जीव शक्ति को तटस्था कहते हैं। अर्थात अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति, इस शक्ति और माया शक्ति के बीच में यह रहती है, इसलिए तटस्था शक्ति। तटस्था माने तट स्थिर, तट पर स्थिर। तट किसको कहते हैं? नदी के किनारे उसके तट पर जब रहता है तो उसको तट कहते हैं, जहां पर जल और फल मिलता है। जहां जल और फल मिलता है उसको तट तो कहते हैं, किंतु कहां मिलते हैं? कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है, लंबा चौड़ा स्थान भी नहीं है, वो काल्पनिक रेखा है। वो जब पानी कम जाता है तो तट नीचे चला जाएगा और पानी बढ़ जाएगा ऊपर तो वो तट ऊपर चला जाएगा। दोनों का जो मिलन स्थल है, जल और फल जहाँ मिलते हैं, ये काल्पनिक रेखा है। कहाँ मिलते हैं? जिस समय जहाँ रहते हैं वहीं पर मिलते हैं, किंतु वह इतना बारीक होता है, इतना बारीक, उस पर कुछ रह ही नहीं सकता। ये कल्पना आती थी। तो ऐसे ही जीव माया शक्ति और चित शक्ति के बीच में रहने के कारण वो कहाँ पर उपस्थित है ये ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
अर्थात जीव स्वरूपतः चेतन है, किंतु जड़ माया में प्रवेश कर सकता है, इसलिए उसको तटस्थ। कब से ये माया में पड़ा हुआ है कोई ठीक नहीं, अनंत काल से, अनादि काल से है। कब से? जब से वो प्रकट हुआ, अर्थात जब से कृष्ण, तभी से वो है। तो भी लोगों को समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, उसका स्वभाव तटस्थ है, इसलिए उसको तटस्थ कहा। तट शक्ति पर तट माने क्या, यदि माया की तरफ में देखेगा तो उसको भोग करने के लिए माइक आवरण में वो फंस जाता है, और जब भगवान की तरफ देखता है, भगवान की सेवा की इच्छा होती है, तो वो बैकुंठ जगत में चला जाता है, इसलिए उसको तटस्थ कहा गया। तो अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, ये तीन शक्ति। अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबारूपर, सबारूपर मैंने सबसे श्रेष्ठ है। अंतरंगा शक्ति भगवान के अंगों में या चित्त जगत में प्रकाशित है, इसलिए इसको सबसे ऊपर कहा है। ये अंतरंगा शक्ति अथवा चित्त शक्ति सबारूपर सबसे ऊपर में विश्व। और कहे कैसे कहते हैं, कहीं प्रमाण है तो उसके लिए बतला रहे हैं। हाँ, विष्णु पुराण में इसके लिए ऐसे ही नहीं कहते। विष्णु शक्ति प्राप्रोक्ता क्षेत्राख्या क्षेत्राज्ञा तथा परा अभिज्ञातम संज्ञान तृतीया शक्ति ऋष्य। अर्थात विष्णु शक्ति का नाम है पराशक्ति। भगवान परम पुरुष हैं, इसलिए परम पुरुष की शक्ति का नाम पराशक्ति है। और वही तीन के रूप में प्रतिष्ठित, एक पराशक्ति, एक क्षेत्राज्ञा और एक है अपरा। तो यहां पर पराशक्ति हो गई चित शक्ति, और क्षेत्राज्ञा माने जीव, और अपरा माने माया। माया ये तीन शक्ति के रूप में लिखा गया। अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति ऋषभ, ये जो अपरा शक्ति है ये तृतीय, ये तृतीय अपरा शक्ति। अविद्या कर्म संज्ञान, इसको अविद्या भी कहते हैं। सच्चिदानंदमय कृष्ण विश्व, कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंद शब्द में तीन चीजें हैं, सचित आनंद। अद्वैतवादी कहते हैं कि वस्तु एक है, प्रत्यक्ष वस्तु एक ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति, दूसरा कुछ नहीं। जीव क्या है, वो ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मैव न अपर, अपर दूसरा कुछ नहीं। और ये जगत असत्य है, वो लोग कहेंगे क्या कहते हैं, तो कहेंगे जिसे तब तो सच्चिदानंद में ये जो तीन आया, ये ब्रह्म सच्चिदानंदमय है, शास्त्रों में भी आया है ब्रह्म सच्चित आनंदमय। तो ये तीन क्यों हुआ, तीन क्यों, सचित आनंद ये तीन हो गया। तुम कहते हैं एकम एव अद्वितीय, एकम एव अद्वितीय, दूसरा कुछ है ही नहीं, बस एकम एक ही है। तो यहाँ पर सचिदानंद में सचित आनंद ये कैसे हुआ, तो वो कहते हैं जैसे बैंगन में फल बहुत लगे हुए हैं, शंकराचार्य की मैया ने कहा अरे बैंगन ले आओ, तो वो एक तोड़ करके ले आए, अतिथि आए हैं 10-20, तो एक बैंगन में क्या होगा, इसलिए उसी मैया ने कहा जरा अधिक बैंगन ले आए, तो वो एक बैंगन तोड़ करके ले आए। तो मैया ने कहा कि अरे इतने बैंगन में दे करके आई थी और एक ही तू ले आया, तो ऐसे कितने आदमी हैं तो काम कैसे चलेगा, अधिक क्यों नहीं लाए। तो मैया एक ही था, मैं एक ही लाया, कैसे ये चलो तो बस उसको ले लो। देखा जी बैंगन एक एक पेड़ में 10-10, 20-20 लटके बड़े बड़े काले काले बैंगनी रंग के बैंगन। अरे झूठ बोलना सीख लिया अभी से, एक दो तीन कितने सब बैंगन लगे हैं। अरे नहीं भैया, एक 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 ही तो सबको एक एक आए, एक ही बैंगन। अरे सब तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, एक दो तीन नहीं जानता, बस एक पकड़ दे दिखाई नहीं पड़ता है कि तुमको ये 10-20 बैंगन कितने लगे हुए हैं। ऐसा तो वो है उनको कहा जाता है अदल बदल फेंटा,
फेंटा
मैंने उनको मारने पर भी लज्जा नहीं
हुई,
मारने पर भी कोई लज्जा नहीं, गाली देने से भी नहीं, काम करते हुए। तो उसे कहा गया जैसे ये सच्चिदानंद उनको कौन कहा गया, तो सत माने जो होता है वही चित ही, सत माने सब, चित माने सब, आनंद माने सब, सब एक, तीन है नहीं एक ही है, सचित आनंद तीन नहीं है एक ही। तो ये तीन कैसे कहा गया, पर ये कहा गया क्योंकि एक ही है, सत एक है, चित भी एक है और रूप एक। माने तर्क वितर्क झूठ मूठ का बाल का खाल उड़ाते हैं, सत और चित आनंद भगवान तीन प्रकार के हैं। जगत में जितना जो कुछ है यही तीन भागों में विभक्त हो सकता है, सत चित और क्या, सत माने सत्ता,
चित माने ज्ञान,
और चित माने ज्ञान और आनंद, तीन ही चीज। यदि सब विश्व को भाग कर दिया जाए तो ये तीन ही चीज है, किसी की सत्ता होगी और उसमें ज्ञान कुछ जरूर होगा और उसमें आनंद कुछ होगा, इसके अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं। ये तीनों चीज ये सत्ता परिपूर्ण रूप में कृष्ण के अंदर है। तो सत माने सत्ता और चित माने ज्ञान और आनंद का आनंद ही है सच्चिदानंद। ये तीन ये वृत्तियां हैं पराशक्ति की, उसमें जो चित कहा ना वही एक ही शक्ति पराशक्ति की तीन वृत्तियां हैं। कैसे आनंद से लादिनी, आनंद अंश से लादिनी, और शब्द अंश से संधि और चित अंश से संधि, उनकी शक्ति तीन प्रकार की, सब चित आनंद। तो चित अंश से संबित, संबित माने ज्ञान, ये ज्ञान ही पीछे भाव के रूप में परिणत हो जाता है। कैसे, जैसे मैं हूं, मैं कौन हूं, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी की पत्नी, ये सब भाव है। यही भाव होने से तब प्रेम होगा, जब तक यह संबंध रूपी भाव नहीं होगा यही भाव अंत में जाकर के कृष्ण के प्रति लागू होने पर ये आनंद का रूप। चित अंश संबित, संबित माने नॉलेज ज्ञान, प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितना भी ज्ञान होता है ये संबित। जारे ज्ञान करी माने लादिनी संधिनी संबित पये को सर्व संशय लाद तापकारी विषा कोई नो गुण बदल। इस जगत में वही संबित संधिनी लादिनी किसी न किसी रूप में इस जगत में भी हैं। यहाँ पर इस जगत में लाद तापकारी जो सुख का कारण है वही दुख का कारण हो जाता है। पुत्र नहीं था तो दुख है, पुत्र हुआ आनंद हुआ, अब पुत्र कुपुत्र निकल गया तो क्या हुआ, अधिकांश रूप में ऐसा ही। उसी तरह से सभी कुछ इस जगत में पहले सुख के लिए कारण होता है, अंत में दुख का कारण होता है, या एक ही समय में मिश्रा मिश्रा माने सुख और दुख दोनों का कारण। श्रीमद् भागवत में बतलाया चित्रकेतु उपाख्यान में, पुत्र हुआ खूब आनंद हुआ, मर गया बड़ा हर्ष शोक। इसी तरह से सब जगत ये भरा पड़ा, इस जगत में पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से लाभ माने आनंद और ये सब कुछ नहीं है। इस जगत में तो गुण युक्त, गुण माने सत्व रज और तम, ये तीनों से मिले हुए विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व का कोई पता नहीं। उस जगत में दुख क्या है शोक क्या है ये कुछ लोग नहीं जानते। उस योग में उस लोक में तीनों शक्तियां विशुद्ध रूप में अवस्थित होती हैं और कृष्ण में होती हैं, वहां पर ये माइक गुण दुख शोक इत्यादि उसमें कुछ भी नहीं होता। अब ह्लादिनी आनंदान से ह्लादिनी बतलाया उस शक्ति को, पराशक्ति को, कृष्ण के ह्लादेता के नाम कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, इसलिए उसका नाम है ह्लादिनी। ह्लाद प्रह्लाद प्रकृष्ट रूप से आह्लाद आनंद। हम लोगों में क्या है, जड़ विषयों की अनुभूति करके या जड़ वस्तुओं को पा करके हमारे हृदय में ह्लाद होता है और थोड़े देर के बाद में वो वस्तु दूर हो जाती है तो दूर का काम, वहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता, वहाँ पर विशुद्ध रूप में सब समय रहता है। ह्लाद का काम ही है क्या, कृष्ण को आनंद दे। कैसे आनंद देता है तो वो उसी के लिए बतला रहे, सही शक्ति द्वारा सुख आस्वाद है आत्मा, कृष्ण उसी ह्लाद शक्ति के द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वाद, कृष्ण सुख स्वरूप स्वयं है और उसी शक्ति के द्वारा फिर और भी सुख आस्वादन करते हैं। नव नवायमान रूप भक्त गणे सुख दीते ह्लादिनी का, इस ह्लादिनी के कारण ही ह्लादिनी शक्ति के माध्यम से जीवों को भी सुख दे। यह सुख तीन प्रकार का हुआ, जड़ जगत में जड़ वस्तुओं की प्राप्ति से और सानिध्य से जो सुख होता है वो जड़ सुख का मेटेरियल सुख होता है, और जीव के स्वरूप में एक आनंद है वो बहुत थोड़ा है, आंशिक रूप में कण के रूप में है, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद सुख। और चित जगत में कृष्ण के सानिध्य में कृष्ण की सेवा से जो सुख पाया जाता है उसको कहते हैं प्रेमानंद। इसके तीन रूप, सत्ता भी वैसे तीन है, उस जगत में जीव का जो स्वरूप होता है शुद्ध सत्व का होता है, उसका जन्म मरण नहीं होता है, और जीव स्वरूप में वो उसका स्वरूप बहुत अणु है, वो माया के द्वारा आच्छादित हो जाता है और कृष्ण के सम्मुख रहने से माया में नहीं पड़ता। और अभी हमारा जो स्वरूप है ये पंचभूत का स्वरूप है, वही आत्मा को खड़ा है। अभी दो स्वरूप हैं, एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है स्थूल शरीर क्षित जल भाव गगन समीर पंच रचित यह अधम शरीर। ऐसा भगवान ने इसको बनाया है मिट्टी जल वायु इत्यादि लेकर, जैसे एक मूर्ति भी बनाते हैं तो मिट्टी जल इत्यादि लगता है, मिट्टी जल धूप भी चाहिए और भीतर में खोखला भी चाहिए और फिर उसको आग में देकर के पकाते भी हैं, इस तरह से वो उसमें भी पांच तत्व भगवान ने अद्भुत रूप में इसको बनाया और उसमें ऐसी बुद्धि मम की लगा दी, मैं की, मैं यही शरीर इसका तृप्त करना, जानते भी हैं शास्त्र भी पढ़ते हैं कि मैं यह शरीर नहीं मरूंगा भी, कभी इसकी आसक्ति और मैं हूं ये भाव नहीं जाता। कांटा लगने से हम हजार आदमी मुक्त हैं, कभी कांटे में हम फंसते जाएंगे और दुख और अपमान इसके लिए ये ऐसी है। तो वो जो शक्ति है लादिनी शक्ति, कृष्ण को लाभ करती है, आनंद को बढ़ाती है और जीवों को भी कृष्ण से आनंद दिलाती है उनकी सेवा में। कैसे? लादिनी तो शक्ति है, रूप कैसे हुआ? तो रूप हुआ ऐसे, लादिनी सार अंश प्रेमना, लादिनी सार अंश तार प्रेमना। एक लादिनी शक्ति है ना, ये आनंद है और उसमें संबित जो थी ज्ञान अथक भाव, ये मिल करके भक्ति हुआ, ये वृत्ति हुई। ये पहले मन में है भाव, पहले कोई भी चीज की रूपरेखा होती है वो भाव से उत्पन्न होती है भीतर में, अंतर में, और फिर उसका रूप ऊपर से दिया। जैसे एक कलाकार है, उसको चित्र बनाना है, तो चित्र कैसे बनाएगा? पहले मन में विभावित होगा, मन में बनाएगा। जब मन में ठीक कर लिया कि ऐसे हम आँख, ऐसे नाक, कान, ये सब हम करेंगे, ये मैंने प्रौढ़ कलाकार का, कच्चे कलाकार नहीं। कच्चा कलाकार तो ऐसे होते हैं जो शंकर बनाने बनाते बनाते बंदरगढ़ लिया, शंकर की मूर्ति बना रहा था और बनाते बनाते जरा बंदर जैसा हो गया, कह दिया ये बंदर ही ठीक है, बस बंदर हो गया। ऐसा नहीं, प्रभु कलाकार है, मन के अंदर में भावना कर लेंगे कि हमको ये चीज बनाना है और ठीक उसी को बाहर में बन पड़ा, जैसे हो गया तैसे नहीं। ये कलाकार का काम नहीं, ये तो जैसे हो गया तैसे हो गया, ये नहीं। कलाकार वो है जो अपने मन की वृत्तियों को एकदम जगत में प्रकाशित, तो वो कलाकार। तो वैसे ही ये हलादनी तो शक्ति है, रूप कैसे धारण किया उसके लिए बदला है। तो संधिनी शक्ति में भाव मिश्रित हुआ, दोनों मिलकर के हुआ शुद्ध सत्व रूपी भाव। वो बहुत रूपों में विभक्त होकर के जी हृदय में प्रकटित हुआ। अब उसमें स्थाई भाव, उसके ऊपर में विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी मिलकर के एक रस को प्रकट किया। उस रस का नाम हुआ प्रेम, वही प्रेम आगे बढ़ करके स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। ये महाभाव रूप धारण करता है और वही रूप धारण करके गोपी होता है, लाखों कोटि, और लाखों कोटि गोपियों का भाव सम्मिश्रण मिलकर के एक राधा जी। यही राधा जी लादिनी सार अंश प्रेम का नाम आनंद चिन्मय रूप रसे राख्या। आनंद और चिन्मय, चिन्मय मैंने वैषम्बी, ये दोनों मिलकर के उसका नाम प्रेम हुआ। यही प्रेम आगे बढ़ करके प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग होकर के महाभाव हुआ। अनुराग तक गया, राग हुआ कब? जब उसके भाव नित्य नवीन कृष्ण के रंग में रंगते चले रहते हैं, तब हुआ ये राग। और प्रतिक्षण नवनमयमान होता है तब इसको कहते हैं अनुराग। अनुराग जब स्वसंवेद दशा को प्राप्त होकर के जावद आश्रय वृत्ति में उपस्थित होता है, तब होता है महाभाव। यहाँ पर दोनों मिले हुए, संबित और राजन, सही महाभाव रूपा राधा का खजान। यही महाभाव ही श्रीमती राधिका जी का रूप। ये एक ऐसा चिंतामणि है भाव कि कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करता है, ये चिंतामणि है। चिंता मैंने किसको कहते हैं, चिंता हो और साथ साथ में कोई भी काम ना करो उसे जरूर। जैसे जागतिक एक चिंतामणि के लिए कहते हैं, मान लें कि कोई थका हारा व्यक्ति किसी जंगल में आपके करता हुआ पहुंचा, गंभीर जंगल में एक सुअर को देखकर उसके पीछे घोड़े को छोड़ दिया और वह सुकर छिपता हुआ भागता हुआ टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ कभी जंगल में उसे ले गया। शाम हो गई, जब शाम हो गई कुछ कर चंद्रकार हो गया, अंधकार में वो विलीन हो गया। अब उसको जब नहीं देखा तो देखा अरे सूर्य तो अब डूब गए, अंधकार हो रहा है, अब कहाँ जाऊं, कोई पथघाट कुछ नहीं, और जंगल में सिंह भालू इत्यादि हाथी ये सब गर्जन करने लगे। अब डर के मारे सब पक्त, बड़ी जोर से प्यास और भूख लगी, सब करके चूर हो गया। इतने में वन में एक वृक्ष के नीचे पहुंचा, वो वृक्ष कौन था, कल्पतरु। कल्पतरु मैंने वही चिंता मणि समझो, समस्त इच्छाओं को कल्पनाओं को पूर्ण करने वाला। तो वहां पर पहुंच करके थक करके देखा, छाया है यहाँ पर, यदि शीतल जल हमको मिल जाता भाई प्राण मेरा लौटा। इतने में देखा कि शीतल पानी आ गया, अरे पानी तो मिला किंतु यदि कुछ खाने को मिल जाता। तो इतने में देखा कि खाने के लिए जो कुछ आता था वही आ गया, बड़ा प्रसन्न, खूब खाया पिया। अरे यदि एक पलंग होती ना होता तो मैं जरा भी शाम कर लो, इतने में पलंग वहां पर आ गया, उस पर भी शाम कर लो। जब थोड़ा सा सो लिया तहा था नींद खुली, भयंकर रात्रि, बाघ सिंह गर्जन कर रहे, सोचा जी अरे कोई सिंह ना आ गया, इतने शत्रु सिंह आ गया। जब आ गया था अरे कहीं मुझे खा ना ले, खा लिया। ये तो जागतिक चिंतामणि या कल्प तरु का ही है। अब अपराधिक चिंतामणि की चिंता कीजिए, अपराधिक चिंतामणि कौन है, यही है महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका, जो कृष्ण रूपी परम पुरुष की समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। जो कुछ भी चाहेंगे ना वैसा, और किसी में क्षमता नहीं, न बैकुंठ में किसी को है और न तो ब्रज में है न कहीं है, बस एक मात्र श्रीमती राधिका में ही ऐसा नहीं जो उनको पूर्ण करता है। महाभाव तय उभय मध्य राधिका सर्वार्थिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणे अति बलिय उभयोर। जितनी ब्रज में गोपियां हैं उनमें समस्त गोपियों में राधिका और चंद्रावली गो सबसे श्रेष्ठ, रूप में गुण में सब विषय, और उन दोनों में भी महाभाव स्वरूपा यम, यम माने राधिका जी महाभाव स्वरूपा हैं, गुणों में सबसे अत्यंत श्रेष्ठ ये है, चंद्रावली से भी श्रेष्ठ है, कृष्ण की अत्यंत वल्लभा है, उनको भी मुग्ध कर देने वाली है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ मानी। कोई महिला मत समझना, वही महाभाव स्वरूपा इस रूप में समझ, प्रेम स्वरूप देव प्रेम भाव। कृष्ण साधारण रूप में आत्माराम है और आत्मकाम है, उनमें कोई भी कामना नहीं, उनकी समस्त कामना परिपूर्ण है, उनको किसी चीज का अभाव नहीं। हम लोग जितना भी पूर्ण हो हम लोगों में अभाव रहेगा ही, कुछ न कुछ अभाव रहेगा ही, कोई भी ऐसा जगत में नहीं है जो जन्म है उसमें वो अभाव रहेगा, चाहे वो कोई विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनी भी हो जाए एक दिन मरना पड़ेगा, मृत्यु का अभाव उसमें नहीं है, रोग का अभाव नहीं है, अभाव से ही उसके शरीर का गठन हुआ है, इसलिए जरूर है। और जीव भगवान का अंश है, इसलिए यह कभी पूर्ण होगा नहीं कि यह अभाव बना है, किंतु भगवान पूर्ण है। उनसे जितना जो कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण है, और जो निकलने वाला जो है वो भी पूर्ण है, और भगवान निकले हुए होने पर भी वो भी पूर्ण है, इसलिए भगवान का पूर्ण है। किंतु जीव कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो प्रेमर स्वरूप देव, किंतु कृष्ण में कोई भी इच्छा और वांछा नहीं, यह बात ठीक है। उनको कभी भी कमी नहीं है, उनको किसी से डर नहीं है, उनको शोक नहीं है, मोह नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अभी एक कमी है, क्या कमी है? नहीं, कमी यह है, जब कोई भक्त उनको सेवा करने की कोई वासना करता है तो उसको भोगने की इच्छा उनमें हो जाती है। मान लिया कि मुझे प्यास नहीं है, और एक छोटा सा बालक कोई बाल, यही लड़की छोटी सी, बड़े प्रेम से दादू 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 कहती हूँ या बाबा कहती हूँ, खूब अच्छा सुंदर सुशीतल जल लाए महाराज जी आप पानी पीते, मैं क्या करूँ,
थोड़ा सा
पीना ले जाओ हटाओ प्यास नहीं दिया, ऐसा कहूँ तो लोग कहेंगे जैसे ये और अशी। इसे जब लाई हमने हाथ से ले लिया, प्यास भी नहीं है, कभी मुख से लगा दिया, एक घूट पानी पी लिया। ऐसे ही कृष्ण में किसी चीज की कमी नहीं है, किंतु उनका यही स्वभाव, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव मह्यम्। जो जैसा हमारी सेवा करने की अभिलाषा करता है, उसकी उस इच्छा को उसी रूप में पूर्ण करता। उसकी इच्छा हुई जे ठाकुर को खिला, एक लड़का था, उसके पिताजी थे, पिताजी ठाकुर की रोज सेवा करते थे, सालग्राम ठाकुर थे, उनकी सेवा करता था। रोज 5-6 मोटी मोटी रोटियां और सब्जी, कभी दाल, कभी दही, कभी माखन, कभी मिश्री, वो ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगा करके और ले आ करके उतार करके भोग प्रसादी, और फिर अपने सब लोग परिवार के सहित उसे खा लेते। एक दिन वो किसी 2-4 दिन के लिए बाहर जाने लगा, तो उसका छोटा सा बच्चा था, बच्चे को बुलाकर जो बेटा मैं जा रहा हूँ, आज कोई पुजारी मिला नहीं तो मेरे उपस्थिति में अनुपस्थित ही ठाकुर को पूजा कर, और ये भोग ठाकुर जी के सामने रख देना, उनको खिलाते जाते, कोई तरह की कमी नहीं हुई। ये कहकर के वो चला गया। उसकी मैया ने रसोई बनाई, और रसोई बना करके वो रोटी रोटी और सब्जी दाल ठाकुर जी के सामने रख दी, रख करके खड़ा हो गया। जब ठाकुर जी भोग को आरोगिए, 3 बार कहा, फिर आंख बंद कर लिया जैसे उसके पिताजी करते थे, और ताली बजाई और उनको आवेदन करके वहीं पर खड़ा रहा। 2-4 मिनट हो गए, फिर आंख खोला तो देखा जरूर तो कुछ खाया नहीं जा सका, तैसा पड़ा है। फिर उसने कहा, ठाकुर जी आप रुष्ट क्यों हैं, पिताजी तो आपको देते थे खा लेते थे, और मैंने दिया आप खाते नहीं, आप पा लें। फिर आँख बंद किया, देखा जी खा लूँ, फिर आँख खोला तो देखा जी नहीं खाए, तो उसको बड़ी ग्लानी हुई, मैं बालक हूँ और देने नहीं आता है इसलिए नहीं खा। तो बिलख बिलख करके रोने लगा, जो प्रभु हमारे देह को आप खा रहे हैं। जब रोने लगा तो अंतर से उसके लिए खाना, तो सचमुच में देखा जो ठाकुर जी ऊपर आए सालग्राम, और वहाँ पर बैठ गए, और हाथ उसमें से निकल आए, और निकल करके ठाकुर जी ने उसे उसके सामने देखा और सब खा लिया। जब पूरा खा लिया तो इसने हाथ बुला दिया, इसके बाद ठाकुर जी अपने आप सिंहासन पर चले, अब ये प्रसन्न होकर के चला गया, थाली थाली सुन मैया को दे दी थाली। अरे रोटियां कहाँ गई, प्रसादी, प्रसादी क्या, वो तो सब ठाकुर जी ने खा लिया, खा लिया। ऐसे दो तीन दिन हुआ, उसकी मैया भी बड़ी आस करती थी। अब तीसरे दिन पिताजी मैया ने कहा, ये तुम्हारा बेटा कैसा, तुम आता था तो प्रसाद ले आता, तब तो प्रसाद आता ही नहीं, सब पता कि ठाकुर जी खाए, न जाने कौन खा गया। तो वो आकर के कहा, अच्छा आज दो मैं छिप करके देखूंगा। तो छिप करके देखने लगा तो आज ठाकुर जी आ नहीं गए। बच्चे ने कहा, जैसे आज ठाकुर जी आ क्यों नहीं गए, आज क्या बात हो गई। इशारा से बताया, ये तुम्हारे पिताजी छिप करके देख रहे हैं, इसलिए नहीं। पिताजी जब ये लौट करके गया, फिर ठाकुर जी ने खा लिया। फिर खाली खाली क्यों, इतने दिन तक उन्हें खा, आज खा लिए, तो सब बिगाड़ने लग गया। और ये सरल लड़का उनको दिया, ठाकुर जी ने ग्रहण कर। इसी प्रकार शरीर सरलता से प्रेम से देने पर लोग ग्रहण कर, कुटिल चित्त होने पर नहीं। हम लोग का भी चित्त पिटिल और रहता, बिना प्रेम के नहीं देंगे। तो पिता का अंत में पिताजी को तो किया हुआ खाया नहीं, और उन्हें हस्तक्षेप किया, पीछे न जाने उनका किया हुआ सर्वनाश। वो पूरी के पास में अलावनाथ में ऐसा ही देखा जाता है, उनका सर्वनाश बनता ही करते। तो प्रेम जहाँ रहेगा उनको भूख होती है, यशोदा के मुख घर में सब समय भूखे, और नहीं तो यही ब्रह्मवादियों के लिए आत्माराम, आप तो काम, उनको कोई काम ना नहीं, सावक राम जैसे बैठे हुए। और नहीं तो सनातन गोस्वामी के यहाँ कच्ची कच्ची अधजली जैसी तैसी खिचड़ी भी मांग करके, अरे कहेंगे तुम थोड़ा सा नमक तो रोटी के साथ में दे दो, उनसे रोटी। ये प्रेम की बात है, तो ऐसा प्रेम होना बड़ा भारी कठिन है। तो कृष्ण को कोई भी कामना नहीं है, किंतु राधा जी की या गोपियों की सेवा की वासना को देख करके उनमें उस चीजों को ग्रहण करने की लालसा होने से ही भगवान का अवतार होता है। अवतार का कारण भी यही है, भक्तों की सेवा को प्राप्त, उनके अंदर में भक्तों की सेवा करने की लालसा होती है। इसलिए हम लोग के साधन में भी ऐसी यदि हो कि ठाकुर जी की हम सेवा करेंगे, तो ऐसा ही होगा। एक ब्राह्मण थे, जन्म था दक्षिण देश, नाम था गोपाल। वो महाप्रभु के संपर्क में आकर के भक्त बन गए, नारायण के भक्त। घूमते धामते वे पिता के मृत्यु के बाद में, परलोक गमन के बाद में उत्तर भारत में आए और गोमती के निर्गम स्थान पर पहुंचे। गोमती माने ये जहां पर की सालग्राम की शिलाएं मिलती हैं, गंडकी नहीं सुन इधर निकली, तो वो गंडकी नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर सालग्राम निकलते हैं। सब भाई सालग्राम का चिन्ह है, उसमें सोना लगा रहेगा और चक्र उसमें रहता है और सोना भी लगा रहेगा स्वाभाविक रूप में। तो वहाँ पर गए तो एक बड़ा सा उनको सालग्राम मिला, उसको लेकर के वृंदावन में आए और वहीं पर उनकी उपासना करते हैं। झूलन का दिन था, सभी लोग ठाकुर जी को झूला में झूला रहे हैं। इनकी भी बड़ी इच्छा हुई है, ठाकुर जी आपको झूले में कैसे झूला, आपका श्रृंगार कैसे करूं। बड़े खेद होकर के सो गए रात में, सालग्राम शिला थे उनको क्या श्रृंगार करेंगे, उनको माला ऊपर से रख दी, तुलसी ऊपर नीचे रख दी, बस यही उनका श्रृंगार। तो रात में सोए तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हें तुमको दुख हो रहा है, हमको श्रृंगार करके चढ़ाएगा, इसलिए जाओ देखो जो हमारा कितना सुंदर रूप है, अभी जाओ अभी। बस उनकी नींद खुली और जा करके उन्होंने सालग्राम की बिटिया को, उन्होंने बिटिया को ऊपर से कपड़ा हटाया, देखा जे सैनिक हुए कौन, राधा रमन जी, वही शालग्राम जी ही जब देखा और उलट करके ऐसे चित्त सोए हैं, एक मुख मंडल यहाँ पर बंसी के लिए ऐसे हाथ किए हुए और कमर बंकी और पैरों पर पैर रखे हुए देख करके आश्चर्यचकित हो गए, प्रेम में भर गए, गदगद हो गए, खड़ा किया, देखा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन तीनों विग्रहों का की आकृति उसमें खड़ी हुई, गोविंद जी के चरण, मदन मोहन जी के चरण और गोविंद जी के बस्तक्षक और गोपीनाथ जी का मुखार एक विग्रह के अंदर उसका श्रृंगार किया और झूले पर रख करके और उसको झुलाया दूसरे